गोस्वामी ने कहा, कलयुग के लक्षण प्रविष्टं प्रवेश्य निज चक्रवर्तिते अपि सीमाभि निशम्य विस्तरत् कथं कर वार्ता समाचार को प्रिया अधिक रोचक नहीं। ततः तत्पश्चात् चराचरं धनुष्बाण संयुगा अवसर पाकर शौंडिः विरोचित कार्यकलाप आदरे ग्रहण किया। अभी कृपया मेरे पास दोहराए श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखित अनुवाद। श्रील प्रभुपाद जी सूत गोस्वामी ने कहा, जब महाराज परीक्षित कुरु साम्राज्य की राजधानी में रह रहे थे तो अपने राज्य की सीमा के भीतर कलयुग के लक्षणों को प्रवेश होते देखा। जब उन्हें इसका पता चला तो उन्हें यह रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ, लेकिन इससे उन्हें उसके विरुद्ध लड़ने का अवसर अवश्य प्राप्त हो सका। अतएव उन्होंने अपना धनुष बाण उठाया और सैनिक कार्यवाही के लिए सन्नद्ध हो गए। कृपया श्रवण करें, प्राप्त करें कृष्ण के पश्चिम हर शरण कृष्ण भक्ति विद्वान स्वामी प्रभावी। तत्पर्य महाराज परीक्षित का राज प्रशासन इतना चुस्त था कि वे अपनी राजधानी में शांतिपूर्वक रह रहे थे, लेकिन उन्हें समाचार मिल गया कि कलयुग के लक्षण उनकी राज्य सीमा में प्रवेश पा चुके हैं और उन्हें यह समाचार अच्छा नहीं लगा। कलयुग के लक्षण क्या है? ये इस प्रकार है। एक, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। दो, मांस भक्षण की लत। तीन, मादक द्रव्य सेवन अथवा नशा। तथा चार, युग क्रीड़ा में रुचि। कलयुग का शाब्दिक अर्थ कलंक का युग है और मानव समाज में उपर्युक्त चारों लक्षण सभी प्रकार के कलंक के मुख्य कारण होते हैं। महाराज परीक्षित ने सुना कि उनके राज्य के कुछ लोग पहले ही उन लक्षणों के शिकार हो चुके हैं। अतः वे चाह रहे थे कि अशांति के ऐसे कारणों के विरुद्ध अविलंब कदम उठाए जाए। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम महाराज परीक्षित का राज्यकाल तक जनजीवन में ऐसे लक्षण व्यावहारिक रूप से अज्ञात थे और जो ही उनका थोड़ा पता चला क्यों ही वे उन्हें समूल नष्ट कर देना चाहते थे। यह समाचार कि सीमा एक समाचार उन्हें रुचिकर नहीं लगा, लेकिन एक दृष्टि से महाराज परीक्षित को युद्ध करने का यह अवसर मिल रहा था। यद्यपि छोटे छोटे राज्यों से लड़ने की आवश्यकता न थी क्योंकि वे सभी शांतिपूर्वक उनके अधीन थे, लेकिन कलयुग के दुष्टों ने उन्हें अवसर प्रदान किया कि वे अपनी शूरता का प्रदर्शन कर सके। पक्का क्षत्रिय युद्ध का अवसर पाते ही प्रफुल्लित होता है। जिस तरह खेल के मैच का अवसर उपस्थित होने पर खिलाड़ी उत्सुक होता है, यह कोई तर्क नहीं है कि कलयुग में ऐसे लक्षण पूर्व निर्धारित होते हैं। यदि ऐसा होता तो फिर ऐसे लक्षणों के विरुद्ध चढ़ाई करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे तर्क आलसी तथा अभागे लोग ही देते हैं। वर्षा ऋतु में वर्षा अवश्यम भावी है। फिर भी लोग अपनी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतते हैं। इसी प्रकार कलयुग में सामाजिक जीवन में उपर्युक्त लक्षणों का प्रवेश होना अवश्यम भावी है, लेकिन यह राज्य का कर्तव्य है कि नागरिकों को कलयुग के एजेंटों अजीब भाव है, एक जगह अवश्यम भाव है, एक जगह एजेंटों का, एजेंटों के संपर्क से बताएं। महाराज परीक्षित कली के लक्षणों में शरीर होने वाले दुष्टों को दंडित करना चाह रहे थे और इस तरह धर्मात्मा एवं निर्दोष नागरिकों को बचाना चाहते थे। राजा का धर्म है कि वह ऐसी सुरक्षा प्रदान करें और यह ठीक ही था कि महाराज परीक्षित लड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ओरिजिनल ट्रांसलेशन प्रॉपर इंग्लिश में है, बाकी अन्य अनुवादक जो है
श्रीलप्रभाजीव सात्वैकं सावधूतं परिजनमेकं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सह गणललिता श्रीदिशानान्वितांश हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशगोपिका कान्तराधा कान्तरमोऽस्तुते सप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाचाकल्पतरोभ्यश्चदुभ्येव पविकानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुविद्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधरश्रीवासादिगौरवभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे।
मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घाय देहि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदयालं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं। नम ओं विश्वपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि इति नामिने, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणीप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्यदेशकारिणे। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण।
सबका हार्दिक स्वागत है विशेष शनिवार भागवत कक्षा में, और विशेष इसलिए है कि आप सब बता रहे हैं। तो यह संदर्भ चल रहा है प्रथम स्कंध के 16वें अध्याय का 10वां श्लोक की चर्चा हुई आज। संदर्भ यह है कि परीक्षित ने कलि का सत्कार किस तरह किया। तो हाउ लॉ की परीक्षित रिसीव्ड द एज ऑफ कली, ऐसा जनरेशन सत्कार कैसे किया रिसीव। तो सत्कार अलग अलग प्रकार से किया गया। तो कली का सत्कार महाराज परीक्षित ने किससे किया, तलवार से किया। तो तलवार से सत्कार, यहां पर श्रील प्रभुपाद कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग करते हैं। निशम्य वार्ताम अनति प्रियां तथा शरासनम सम्युग शौंदी राधवे। उसके पहले लिखा है यदा परीक्षित पूर्व जान के लिए अवसर कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे। तो सुध गोस्वामी बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, और इसके पहले ये बता रहे हैं कि कलि का उन्होंने दंड दिया कलि को, लेकिन ये नहीं बताया शूद्र के वेश में कली पधारे गए, प्रवेश किया था उन्होंने कुरुजंगले। यहाँ पर बता गया कुरुजंगले, कुरुजंगले अर्थात विश्व की राजधानी एक प्रकार से हस्तिनापुर, कुरुवंश के साम्राज्य की राजधानी। तो कुरुजंगला श्री लोगों से वर्णन करते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि संपूर्ण पृथ्वी का जो केंद्र है ये था, ये स्थान था। तो यहाँ पर वर्णन है कि जब इसका वर्णन चल रहा था तो पता चला कि शूद्र के रूप में वेश धारण किए हुए कली का वध नहीं किया गया, सिर्फ दंड दिया गया। ऐसा क्यों? तो शौनक आदि 88,000 ऋषि जो हैं ये प्रश्न करते हैं कि उनको दंड ही क्यों दिया। उनको मृत्यु दंड क्यों नहीं दिया? और यहां पर बताया गया निज ग्राह, यदि आपको लगता है कि हमारे लिए लाभदायी है, श्रेयस्कर है, तो बताएं लाभदायी क्यों है, हाउ इज इट बेनिफिशियल। तो अगर हम 1:16:8 के ट्रांसलेशन में जाएंगे, अनुवाद में जाएंगे, आठवें श्लोक में यहां पे बताया गया, जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहां पर उपस्थित हैं, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि हैं। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान के दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाने चाहिए। तो उनका उद्देश्य है कि यदि ये लाभदायी नहीं है, भगवान के वार्ता को सुनाने में सफल नहीं है, तो ये सूचना हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वॉन्ट दिस इंफॉर्मेशन unless it's beneficial to us। तो बेनिफिशियल क्या है? एक होता श्रेय, एक होता प्रेयर। जो शुष्क काल के लिए, जो सीमित काल के लिए, फॉर अ शॉर्ट टर्म जो लाभदायी है, उसको बोलते हैं प्रेयर। जिसे बच्चा उधर प्रोपर उदाहरण देते हैं कि खेलता रहता है, स्कूल नहीं जाता है, तो उसके लिए प्रेय है खेलना, उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसके लिए श्रेय क्या है? स्कूल जाना, पढ़ाई करना। तो माँ बाप उसको डांटते हैं, डांटते हैं कि तुम्हारे लिए श्रेय ये है, ये करो। तो आगे जाकर ही पता चलेगा कि इसी प्रकार परीक्षित महाराज, जो कि अधिकारी थे, सुधारने के अधिकारी थे, किसी को भी सुधारने के अधिकार चाहिए, उस व्यक्ति के गुरु, उस व्यक्ति के पदाधिकारी, सेवा अधिकारी, उस व्यक्ति के वरिष्ठ होने चाहिए, उन्हीं को सुधारना चाहिए। तो क्योंकि ये राजर्षि थे परीक्षित महाराज, अंतिम राजर्षि थे एक प्रकार, तो उनमें एक क्षमता थी, उनमें अधिकार था कि किसी को सुधार सके। तो सोचिए उस व्यक्ति का पद, योग्यता, स्वयं जो कलयुग को सुधार सके या कलयुग को दंड दे सके। क्योंकि बताया गया है टू करेक्ट समबडी यू नीड फेथ एंड रिलेशनशिप। इसको सुधारने के लिए श्रद्धा भी चाहिए और संबंध भी चाहिए, आप पारस्परिक संबंध भी चाहिए, यानी तक इसको सुधारना नहीं चाहिए, ऐसे बताते हैं। तो क्योंकि एक राजा थे, राजा के लिए सभी प्रजा जो है उनके संतान के समान है, इसलिए एक संदर्भ आता है यमुनाचार्य, जो कि श्रीपद रामानुजाचार्य के गुरुदेव थे, तो कोलाहल नामक एक पंडित से उनका है तर्क वितर्क हुआ था। तो उसमें एक प्रश्न उठा था कि यमुनाचार्य जो कि बहुत भाष्याचार्य के शिष्य थे, बहुत ज्यादा उम्र नहीं थी, बहुत नवयुवक थे, इससे भी कम थे। तो उन्होंने बताया कि मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उसको अगर हम गलत, आप गलत सिद्ध करेंगे तो मैं हार गया। तो तीन प्रश्न पूछे उन्होंने। एक प्रश्न ये था, आप ये सिद्ध करो कि ये जो राजा जो हैं, जो आसीन हैं, जिन्होंने ये तर्क का आयोजन किया है, पांडी राजा, इसको नकार दो, इस सिद्धांत को नकार दो कि राजा धार्मिक हैं। राजा धार्मिक है, इस सिद्धांत को नकारने का मतलब क्या है? राजा धर्मी है। अब राजा जिन्होंने इनको पूरा संभाला है, जिन्होंने धनराशि दी है, उनको कैसे नकारें? उनको कैसे उन्हीं के सामने बताएं कि तुम अधर्मी हो? जैसे हमें आदत है, हमें अपने पदाधिकारियों के, हमसे वरिष्ठ वर्षों को, हम सबके, या कंपनी में काम करते हो तो बॉस को, या कभी कभी माता पिताओं को, जो भी हमारी आदत है कि हमसे बुजुर्गों को हम जो है उनका प्रत्युत्तर दें या ऐसा करें। कलयुग का लक्षण है, कलर हमें बताया गया। लेकिन उनके सामने ही उनको कैसे? तो वो जमाना है सर, हजार साल पहले, मतलब लगभग सोचिए कि 980 ईस्वी के करीब था, 970-960 ईस्वी के करीब था, बहुत साल पहले। तब ये समस्या हुई थी, तो उन्होंने बताया, कोलाहल तो उत्तर नहीं दे पाया, कोलाहल नाम ही कोलाहल है, मतलब बस सिर्फ आवाज होती है, सिद्धांत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि यमुनाचार्य ने उनको सिद्ध किया, यमुनाचार्य ने बताया राजा जो है उसको अपनी प्रजा जितनी भी है उसके सभी पापों का एक छठवां हिस्सा धारण करना पड़ता है धर्म के अनुसार, मनुष्य संहिता के अनुसार. 1/6 ऑफ ऑल कर्मा ऑफ ए सब्जेक्ट हैज टू बी बॉर्न बाय द किंग. स्वीकार करना पड़ता है इस राजा को, क्योंकि एक तो कर वसूली कर रहे हैं. जैसे पृथ्वी महाराज के बारे में बताया गया कि वो सूर्य के समान थे, सबके ऊपर समान दृष्टि जो है रोशनी डालते थे अपनी प्रजा के ऊपर. लेकिन सूर्य तो रोशनी देता है, साथ ही साथ क्या देता है, गर्मी भी देता है. उसी प्रकार कभी कभी कर वसूली भी करना पड़ता है, दंड भी देना पड़ता है. तो दोनों समान रूप से राजा बदलना पड़ता है. तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ऐसे कर रहे थे. तो वहां पे समस्या ये चलेगी, राजा को एक छठवां हिस्सा जो है लेना पड़ता है धर्म कर्म लेना पड़ता है, क्योंकि वो उनके परिपालक हैं, संरक्षक हैं. इसलिए क्योंकि कलयुग में सब मंदा सुमंदा बताइए मंदा भाग्य आपको पा सकता, सभी जो है पाप कर्मों में लिप्त हैं, उनका कर्म राजा को बाई डिफॉल्ट लेना पड़ता है. और क्योंकि वो सब पापी हैं इसलिए राजा का तो मतलब कांटा भी निकाल दिया साड़ी भी नहीं पड़ी. तो इस प्रकार यहां पर एक संदर्भ है, तो आप देख सकते बहुत सुंदर शब्द है. अगले श्लोक में भी नवम श्लोक में बताया गया कलयुग के लोगों के बारे में, मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुष्य वे निद्रया प्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्म भी अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्य में बिता देते हैं. तो कलयुग का लक्षण है, अधिक से अधिक लोग ऐसे करते हैं और रात का समय ज्यादा काम करते हैं. ब्राह्म मुहूर्त में जो कार्य करना है वो कर नहीं पाते, क्योंकि ब्राह्म मुहूर्त में ही ऑफिस से लौटते हैं. काल सेंटर से, तो काल सेंटर जैसे जैसे जाते हैं काल बीता जाता है. और बताया गया कि कर्मी व्यक्ति के जीवन में, भौतिकवादी के जीवन में, हर शाम को जब सूरज ढलता है तो उसके जीवन का एक दिन जो है कम होता है, उसकी आयु घटती है. तो कलयुग का लक्षण है कि निरंतर लोगों की वैसे ही अल्पायु है और भी घट रही है, क्योंकि धार्मिक कार्यों में वो रत नहीं है. और यहां पे बताया गया कि महाराज परीक्षित जो थे उनको ये वार्ता मिली, निशम्य वार्ता अनति प्रियां तथा. अनति प्रियां का शब्द है अधिक रोचक नहीं, अधिक रोचक नहीं. अधिक रोचक कैसे होगा, रोचक ही नहीं होगा कि जो व्यक्ति आया है वो साक्षात चलिए. प्रॉपर अंग्रेजी में बता रहा है कि स्लाइट इंफॉर्मेशन, हाँ स्लाइट इंफॉर्मेशन यहां पर बताया गया वार्ता, विषम्य वार्ताम, वार्ताम. तो वार्ताम का लक्षण यह है कि यहां पे अधिकतर लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थों के लिए लक्षण यही है कि ब्रह्मा जी भी बताते हैं और यही दोहराते हैं रामानंद राय अपने समाज में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के साथ कि ज्ञाने प्रयास मुदपा से नमंत एव जीवन की सन्मुखरिता भवती वार्ता. वार्ता स्थाने स्थितम श्रुतिगतान तनवान मनोवृत ये प्रयास जुता अजितो किसी क्राइस्ट के लोक के, जिस स्थान में है उसी स्थान में स्थित होकर कृष्ण का भजन कीजिए, कृष्ण का गुणगान करिए. आपका आश्रम जो भी है उसमें स्थित रहिए, उसमें रहते हुए कृष्ण के वार्ता का गुणगान करिए. जीवन की सन्मुखरिता भवती है वार्ता, उस वार्ता का गुणगान करिए. ऐसा करेंगे तो क्या होगा, स्थाने स्थितम शुद्धिगतान तनवान मनोवीर, तन मन और वाक से गुणगान करिए. इस भी स्थिति में है जो भी आश्रम में है रहते हुए गुणगान करिए. ऐसा करेंगे तो क्या होगा, ये प्रयास जितो अजितो कैसी तरह से लोक्यम, इस उद्यम से हम उस अजित को जीत पाएंगे. अजिता, अजिता अर्थात भगवान, अजिता भगवान का वो विस्तार है जो कि जब क्षीर सागर का मंथन हो रहा था तो नीचे कूर्म अवतार थे कच्छप रूप में, तो कोई भी मंथन होता है तो ऊपर बैलेंसिंग के लिए कुछ चाहिए, तो ऊपर बैलेंसिंग है अजीता उसके ऊपर जाकर बैठ गए, वो अवतार। तो अजीता मतलब जिनका जीता नहीं जा सकता, आया जिनके शरण लेने से कोई हम जीत नहीं सकते, विशेष करके मृत्यु, उस अजीत का भी अजीता को भी हम जीत सकते हैं। भगवान के हजार नामों में आता है अपरा अजीता सर्वसहा, उस अजीत को भी जीत सकते हैं। तो कैसे जीत सकते हैं? तनुवान मनोभे उनके वार्ता का गुणगान करें, तन मन वाणी से उनका गुणगान है उस वार्ता का। तो उस वार्ता का अगर हम गुणगान नहीं करेंगे तो फिर इस वार्ता को सुनना पड़ेगा कि कलयुग का प्रसर अभी बढ़ रहा है। भौतिक वैज्ञानिकों या प्रकार से शास्त्रज्ञों के भी मत ये है कि 3102 BC में कलयुग का प्रारंभ हुआ, तो समझ ली 3102 और 2012 गिनी के 5024 साल हो गए। और पांडवों के हस्तिनापुर छोड़े हुए कितने साल हुए? लगभग उतना ही हुआ। कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुए कितने साल हुए? 5060 साल। तो आगे से प्रचार के समय कम से कम थोड़ा एक्यूरेट लगने के हम ये बोल सकते 5000 साल के लिए भगवान ने संदेश दिया, आप उनसे बेहतर है 5060 साल के लिए भगवान ने ये संदेश दिया, थोड़ा ऑथेंटिसिटी बढ़ता है तो भी कर सकते हैं। लेकिन वार्ता जो है हमेशा उनके बारे में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ये न्यूज आ जाएगा। हमेशा श्री जयद्रथ महाराज बोलते हैं द ओनली वे टू स्टॉप बैड न्यूज इज टू इंक्रीज गुड न्यूज। हमारे चारों तरफ बैड न्यूज होगा, हो सकता है भक्तों के जीवन में अनेक संघर्ष हैं, प्रचार के क्षेत्र में अनेक संघर्ष हैं, व्यवस्थापन में अनेक संघर्ष हैं, भक्ति के जीवन में अनेक संघर्ष हैं, औद्योगिक जीवन में अनेक संघर्ष हैं, पारिवारिक जीवन में अनेक संघर्ष हैं। बैड न्यूज विल बी देयर, वी कैन नॉट स्टॉप। दुख आ रहे हम अशाश्वतम भगवान बोल रहे हैं। तो फिर जैसे अंग्रेज में बोलते हैं दिस टू शैल सून पास, भौतिक जगत का लक्षण है सब कुछ क्या है? क्षणभंगुर है, अशाश्वत है। इसलिए संघर्ष भी होगा, बुरा न्यूज भी होगा, तो वो भी चला जाएगा, बस सहन करना है। मात्र स्पर्शार्थ कौन थे शीतोष्ण सुख दुखता आगमा बाइनों नित्य स्थान तितीक्षा स्वभावता तितीक्षा। तो साधु का लक्षण भी यही है तितीक्षा कारुणिका, तितीक्षा सहन करेंगे तो भौतिक जगत के जितने भी कठिन परिस्थितियां हैं वो अपने आप बीत जाएंगे, क्योंकि भौतिक जगत का लक्षण ही टेम्परेरी है। जैसे प्रहलाद महाराज बताते हैं बिना पूछे हमें दुख आती है, दुख आता है तो सुख भी आएगा, बिना टेंशन का ही कोई लेगा, ये समझना चाहिए। तो यहां पर ये वार्ता सुनकर लेकिन कोई खुशखबरी नहीं थी, तो बैड न्यूज को खत्म करने के लिए गुड न्यूज बढ़ाना चाहिए, अधिक से अधिक प्रचार बढ़ाना चाहिए। जो लोग सो रहे हैं, जो जीवन को व्यर्थ गंवा रहे हैं जैसा हमने पहले बताया, उन लोगों के जीवन में हर रोज एक दिन कटता है, उस बुरे न्यूज को बंद करने के लिए अच्छे न्यूज बढ़ाए हैं, उनके जीवन में कृष्ण भावना पहुंचा है, यह हमारा सौभाग्य है, ध्येय है और हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, और हमारे लिए इसकी अपेक्षा भी की जा रही है। गुरु परंपरा हमसे यह अपेक्षा करती है कि प्रत्येक गौड़ी वैष्णव या प्रत्येक भक्त जो इस आंदोलन से जुड़ता है उसे प्रचार करना चाहिए। हमारा आज्ञा गुरु हरिया तारे गए देश, गुरु बनना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। नहीं प्रभु जी मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो कीड़ा हूं, मैं तो पतित हूं, फिर जाके बर्तन मांगो, ऐसा एक भक्त ने बताया। बर्तन जैसा क्या बात कर रहा है, मुझे बर्तन मांगने के लिए बोल रहे हैं गोविंदास ने? आपने तो बताया मैं कीड़ा हूं पतित हूं। तो यदि हम अपने आप को पतित समझ रहे हैं तो यह समझना चाहिए कि मैं इतना पतित हूं, इतना पतित हूं कि मैं जो भी बोलता हूं गंदा बोलता हूं, इसलिए मुझे अपने आप को शुद्ध बनाने के लिए कृष्ण कथा करना अनिवार्य है मेरे लिए, इसलिए मुझे प्रचार करना अनिवार्य है। भले ही मुझे कुछ नहीं आया, वो सरस्वती छोटी सी लड़की थी श्रील प्रभुपाद के समय, श्रील प्रभुपाद बुलाते थे उसको, बोलते थे कृष्ण इज गॉड, और लोगों को प्रचार करती थी,
जो सिगरेट फूकते थे उनके सामने बताते थे कि गलत है। तो इस प्रकार हमारे लिए मार्गदर्शन है, क्योंकि कली का लक्षण यही है, कलह का समय है, एक दूसरे के बीच झगड़ा होता रहता है, अंदर बहुत झगड़ा होता रहता है। इसलिए जैसे हम कभी कभी कॉर्पोरेशन जाके स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर सेमिनार देते हैं अलग अलग कंपनीज में, तो कल भी दिया था हमने, तो पिछले 3 दिनों से अलग अलग कंपनीज में दे रहे हैं। तो ये होता है कि हम बताते हैं अक्सर कि श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी अपने प्रवचन में बताते हैं कि अमेरिका में दो जो है प्रोफेशन सबसे पॉपुलर है, क्या क्या? साइकियाट्रिस्ट और लॉयर। क्यों? लॉयर बाहर के संघर्ष को डील करता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आउटसाइड, और साइकियाट्रिस्ट अंदर के कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट इनसाइड। तो इसलिए वो दोनों पॉपुलर है। अमेरिका में अभी भी 60% लोग कम से कम 2 साल में एक बार साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। प्रगति है ना, एडवांस्ड नेशन, एडवांसिंग टूवर्ड हेल, रूपा बोलते हैं, नरक की तरफ प्रगति हो रही है। तो नरक की तरफ प्रगति शुरू कैसे हुई? यहां से शुरू हुई, जो कली स्वयं आगे थे। और यहां पर बताया गया कि जैसे ही उनको छोटी सी सूचना मिली, तुरंत शरासन, शर और आसन मतलब बाण और धनुष लेकर तुरंत निकल गए युद्ध करने के लिए। तो यहां बताया गया कि अब तक उनका जो व्यवस्थापन जो बहुत चुस्त था, इसलिए उनको कुछ करना ही नहीं पड़ा, ऐसे बैठे गए, नहीं बैठे गए, राजर्षि वैष्णव है तो हमेशा भगवान का गुणगान कर रहे थे, लेकिन जैसे ही पता चला पूरा निकल पड़े। ऐसा नहीं कि डिफेंस मिनिस्टर को बोल दिया, डिफेंस मिनिस्टर ने चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस को बोल दिया, उसने एयर चीफ मार्शल को और बाकी अन्य लोगों को बोल दिया कि वो अपने अपने शस्त्र लेकर तैयार हुए और वेटिंग फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स वर्ड टू प्रेस द बटन फॉर न्यूक्लियर बॉम्ब। ऐसे लोग जो समझते नहीं है जीवन के उद्देश्य को, नतः विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराश्रय या बहिरंत मारे रहना अंध यथांधर उभरीय माना। तो ये समझना चाहिए कि अंधा यथांध है, द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, बोथ विल फॉल इन द डिश, गड्ढे में गिरेंगे दोनों। अंधा अंधे को नेतृत्व दे रहा है। और महाराज परीक्षित को सामान्य राजर्ष नहीं थे। यहां पर आगे 12वें अध्याय के जब उनका आविर्भाव हुआ था तब एक श्लोक आता है, न संदेहम महाभागा महाभागवतो महान, न संदेहम महाभागो महाभागवतो महान। महाभागा बहुत ऑस्पिशियस है, शुभ है, और भक्ति के लक्षण है शुभदा, भक्ति हर प्रकार की जो शुभ लक्षण है वो प्रदान करती है। न संदेह, ये व्यक्ति जो इसका आविर्भाव हुआ है, न संदेह महाभागो, बाकी लोग क्या है, मंद सुमंत मते और मंद भाग्य, वो मंद भाग्य है, लेकिन परीक्षित महाराज जो कलयुग के कुछ समय पहले प्रकट हुए थे वो कौन है? महाभागा, महाभागी नहीं, महाभागवतो, फर्स्ट क्लास डिवोटी, प्रॉपर ट्रांसलेट करते हैं महाभागवत मतलब फर्स्ट क्लास डिवोटी, महाभागवतो महान। और रामानंद राय ही बताते हैं, श्री कृष्ण महाप्रभु से जब महाप्रभु पूछते हैं सबसे बड़ा महान व्यक्ति कौन है, सबसे महान व्यक्ति वो है जो कृष्ण का शुद्ध भक्त है। इसलिए क्योंकि भगवान के षडैश्वर्य में एक है यश, इसलिए एवे जाश भुषुत त्रिभुवन, आज भी शिल प्रपात का गुणगान हो रहा है, शिल प्रपात की। तो शिल प्रपात भगवान का गुणगान कर रहे हैं, उन्होंने अपना गुणगान कभी नहीं किया। जब किसी ने बताया कि आई एम गॉड, प्रपात नो योर डॉग, जब किसी ने प्रपात को बोला कि आप भगवान है, प्रपात ने 1970 में उनको संस्था से बाहर कर दिया। क्यों? मैं भगवान नहीं, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूं, भगवान का दास हूं। ऐसा नहीं कि चीफ में स्वामी आप चारों नियमों को तोड़ सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, बस मैं मंत्र दे दूंगा आप लोग जप करो और आप मुक्ति पाओगे या निर्वाण आपको मिलेगा या कुछ और मिलेगा। निर्मल उपाय देते हैं लेकिन निर्मल जीवन के लिए नहीं, तत्परत्वेन निर्मलम। कब निर्मलम? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त होकर, सबसे बड़ी उपाधि क्या है, शरीर हूं, उससे भी बड़ी उपाधि मैं भगवान हूं। तो यहां पर कली का लक्षण यही है कि कंसर्वेटिव बताया जाता है, कोई व्यक्ति चार नियमों के पालन के लिए बता रहा है, स्वामी जी यू आर कंसर्वेटिव, प्रोपाद बोलते हैं उनको बताया यू आर कंसर्वेटिव, तो प्रोपाद बता रहे कि लेकिन कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया प्रोपाद, आई नेवर कॉम्प्रोमाइज प्रोपाद बोलते हैं, क्योंकि प्रोपाद ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, समझौता नहीं किया कली के साथ, प्रोपाद ने कली के साथ समझौता नहीं किया, क्योंकि प्रोपाद इसी प्रकार के शुद्ध वैष्णव के अनुगत हैं परीक्षित महाराज के, उन्होंने समझौता नहीं किया कली के साथ। यहां पे बताया गया कि उन्होंने शर और आसने के पूरा निकल गए, और क्योंकि क्षत्रिय का लक्षण ये तो शुद्ध भक्त है, लेकिन क्षत्रिय का एक लक्षण यह है कि सदैव युद्ध के लिए तत्पर है, उनके पितामह जो थे भीमसेन वो भी ऐसे थे, एक बार कल्याण संबंधिक नामक या पारिजात का एक भाई है फूल है, उसको लाने के लिए द्रौपदी जी ने भेजा था, तो वो तो मिलता था वहां पर मानसरोवर के समीप कुबेर जी का जो वहां पर तालाब है, वहां पर जैसे गए फूल तोड़ने गए हुए तो वहां पर गंधर्वों ने उनको रोका, यक्षों ने रोका, रुकिए ये कुबेर जी का है, यहां से आपको फूल तोड़ना है तो आप उनसे अनुमति ले लीजिए, थोड़ा उन्होंने भी टिकट फॉलो किया, जैसे कि कभी कभी हमें फेस्टिवल से टाइम पे लोगों को गेट पर रोकना पड़ता है, खास करके कार्तिक के समय जब यात्रा चलती है, हमारा बहुत अनुभव है कि बहुत लोगों को रोकना पड़ता है और हम चेहरा नहीं देख पाते, हाथ में पट्टी बांधा है देखेंगे यात्रा में है, देखते जाएंगे जैसे हाथ में पट्टी नहीं रोक देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि प्रॉपर डिसेबल की वाइफ थी, देखें उनके मतलब आप जा नहीं सकते, बहुत कर्मबद्धता के साथ हमने बोल दिया, फिर उन्होंने बोला मुझे रोक रहे हो, उन्होंने सही कहा क्योंकि उनके लिए मना नहीं था, लेकिन हम इतने अंधे हो गए थे अपने पद को लेकर कि हमने वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखा, नियमाग्रह नहीं होना चाहिए कि हर रूल सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वरिष्ठ वैष्णव के लिए अलग नियम है। तो ये सब कलयुग का लक्षण है, मर्यादा भूल जाते हैं, मर्यादा व्यतिक्रम। तो भीमसेन को भीमसेन के लिए उनको मर्यादा थी कि उनसे पूछे, उन्होंने ऐसा बताया, लेकिन भीमसेन क्षत्रिय थे, उन्होंने क्या बताया, मेरे से युद्ध करो, मैं किसी से कुछ मांगूंगा नहीं, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, मैं क्षत्रिय हूं, मेरे से लड़ो, मुझे पराजित करो फिर देखते हैं, ऐसा नहीं बताया, मैं तुमको मार डालूंगा सीधे ऐसे बोले, सबको उनमें उनमूल नाश कर दिया, कुछ समय में काट भाग करके मार दे, फिर वहां से आराम से फूल लेकर निकल गए। मतलब क्षत्रिय का लक्षण यह है, कभी भी चुनौती से पीछे छूटते नहीं, यहां तो सबसे बड़ी चुनौती है, एक तो युद्ध है, युद्ध का अवसर है, दूसरा मेरे राज्य में यह आदमी उत्पात मचाएगा, कली कली आया था लेकिन 432,000 साल तक रुकेगा, कल ही आया था, और हमें लग रहा है कि इस जन्म में कुछ नहीं, कुछ भक्ति करेंगे थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ठीक है अगला जन्म है कर लेंगे, भगवान बताते हैं शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्टो विजायते, जो व्यक्ति योग में आगे नहीं बढ़ता उसको अच्छे गृहों में अच्छे घरों में उसको जो है जन्म मिलता है, सज्जनों के घर में, जिसने कुछ समय के लिए योग करके भ्रष्ट हो गया, जो लंबे अरसे तक योग करके भ्रष्ट हो गया वो वैष्णवों के घर में पैदा होगा, तो मैं तो अभी दीक्षित भक्त हूं, या मैं तो अभी स्वर मना कर रहा हूं, या मैं तो ईश्वर से जुड़ा हूं, तो नुकसान है ही नहीं, भगवान तो बोलते हैं सिर्फ मपे से धर्म से प्राय क्या महत्व पाया, लेकिन भगवान ये भी यहां सिद्ध कर रहे हैं इन शब्दों में, यहां पता चल रहा है कि कली भी आगे बढ़ रहा है, अभी लोग बोलते क्या जमाना आ गया, कितने लोग बोलते हैं आपको कितने साल हुए 5,007 साल, अभी पढ़े कितने 427,000 साल बचे हैं, क्या हाल होगा हमारा, अब हम अगले जन्म के लिए वेट कर रहे हैं, कोई भक्त यदि भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, गुरु को प्रसन्न करना चाहता है, उसके लिए अनिवार्य है कि इसी जन्म में भगवत नाम लौट जाए। हरि बोल का मतलब क्या है? नहीं, मतलब क्या है? करेंगे कि नहीं करेंगे? हरि बोल बहुत मुश्किल है ना, तो जाना है, क्योंकि कली भी आगे बढ़ रहा है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, भक्ति में आगे 16 माला करना कितना आसान है? हाथ ऊपर करके किसको बढ़िया आसान लगता है? सुबह मक्खन जैसा 16 माला करना, हाँ, तो सभी अभी तो प्रभु जी से प्रभु का आशीर्वाद लें कि हमें भी भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरे 16 माला तो बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष, क्योंकि सत्स्वरूप गोस्वामी महाराज बोलते हैं दिस स्ट्रगल इज द प्रोसेस, संघर्ष ही मार्ग है हमारा। लेकिन अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो हो सकता है पुनरावर्तन और अर्जुना बार बार आना पड़ेगा और कली तब और आगे बढ़ेगा। ये तो 10,000 साल तक गोल्डन एज चलेगा, उसके बाद हरिनाम ना रहेगा, ना गंगा जी रहेगी, ना यमुना जी रहेगी, ना गोवर्धन जी रहेंगे, बस एक कई कई लाखों साल बाद एक संबल ग्राम आएगा। तब तक के लिए क्यों वेट करें? किसी से अधिक प्रेम है हमें तो उनके पास तुरंत मिलने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भगवान के पास जाएं तो हमें तुरंत प्रयत्न करना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब भी करना चाहिए, अब जबकि मनुष्य शरीर मिला है तो लाभ उठाना चाहिए। लेकिन कलयुग का लक्षण ही है, कलह का युग है, लोगों को इन चीजों में अधिक रुचि है। क्या क्या? स्त्रियों के साथ अवैध संबंध। चाणक्य पंडित बोलते हैं मातृवत परदारेषु, पर स्त्री को सदैव अपना माता समझना चाहिए और हम कर नहीं पाते आसानी से। प्रभुपाद बोलते हैं बहन की कल्चर क्या है? बहन जी तो बाप है, क्या बहन जी? वैदिक संस्कृति है माता जी, माता श्री, मातृवत परदारेषु। और स्त्रियों के लिए पर पुरुष है पिता समान, और इसका मतलब नहीं कि पिता के साथ बात करते रहे और माता के साथ बात करते रहे, वो भी नहीं। उतना ही अवश्य बात करें भक्तों के लिए लाभदायक है, गृह शास्त्र में आने के बाद भी उतना ही बात करें जितना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। वो भी कोई अवश्य सेवा है जिसको हमें पदाधिकारियों ने दी है, उससे अधिक बात करने की आवश्यकता नहीं है। कोई लाइसेंस नहीं है गृह शास्त्र, और कोई लाइसेंस भी नहीं है सीनियर बनना, क्योंकि माया कभी भी आक्रमण कर सकती है। सीनियर कौन है? नहीं, सीनियर कौन है, किस हिसाब से सीनियर है? सीनियर उम्र से हो सकता है, सीनियर दीक्षा से हो सकता है, सीनियर सेवा से हो सकता है। लेकिन एक होता है वरिष्ठता, दूसरा होता है प्रगतिशील होना, एडवांसमेंट। यहां पर हो सकता है सबसे छोटे उम्र बहुत से देश, What is his age? 16 months. What is his name? Kushagra. हो सकता है Kushagra is more advanced than all of us. Kushagra बुद्धि बोलता है। हरि बोल बोलना ठीक है, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, खुद के लिए भी तो सोचो, 16 महीने का लड़का मेरे से ज्यादा advanced है, उनको सम्मान देना तो अच्छा है, लेकिन उनका संग भी लेना है, उनसे माँ उनके अनुगत भी होना है। जो आपको अगर लग रहा था एडवांस है तो अनुगत भी करना है। कहने का उद्देश्य कि कौन एडवांस तो कोई बता नहीं सकता। प्रभुपाद बोलते हैं एवरीवन इज अ डिवोटी, यू आर सिंपली सेपरेटेड बाय टाइम। तो यहां पर परीक्षित महाराज कनेक्शन ये बताया जा रहा है कि स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना जो है कली का, जय श्री जगन्नाथ बलेश्वर ब्रह्मा की जय। अवैध संबंध रखना ये यहां पर है, मांस भक्षण की लाभ, मादक द्रव्य सेवन, दूध क्रीड़ा। परीक्षित महाराज उसको रोकने के लिए गए। आधुनिक युग में सरकार का काम क्या है? गवर्नमेंट लाइसेंस लिकर शॉप, मतलब चोर के हाथ में चाबी। सबसे गिरा हुआ व्यक्ति
सबके ऊपर इसको सरकार बोलते हैं। तो उसके बाद क्या है, यूरोप में कई ऐसे देश हैं जहां पर व्यभिचार जो है लीगलाइज है। कितना अच्छा है, व्यभिचार लीगलाइज है, नशा लीगलाइज है, ड्यूट क्रीडा लीगलाइज है। कैसीनो द लास वेगास अमेरिका में एक जगह है जहां पर लोग सिर्फ खेलने के लिए जाते हैं, और वहां की खासियत यह है कि एक रात में शादी आपको रचा देंगे और एक ही रात में डाइवर्स भी ले सकते हैं। जगह की खासियत कितना कितना है ना, कितना आगे बढ़ रहा है एडवांस। जितने जितने हम डिवोशन में एडवांस हो रहे हैं, वहां पे कुछ और भी एडवांस हो रहा है। डिवोशन यहां पे हो रहा है, वहां पे प्रमोशन हो रहा है, कोलाहल। तो जैसे भीमसेन का उदाहरण देखा, भौमासुर भी था, जैसे ही उसको पता चला उसके हाथ मतलब इतने हाथों में ऐसा कुछ खुजली हो रही थी, वो पहाड़ों को तोड़ता था, पत्थर को तोड़ता था, उसके समान युद्ध करने के लिए कोई नहीं था। तो फिर शिव जी से प्रार्थना किया कि मेरे समान कोई व्यक्ति युद्ध करने के लिए, जो आप ही युद्ध करो, पहले आप ही युद्ध करूंगा। तो प्रभुपाद बताते यू रास्कल, शिव जी ने बताया यू रास्कल, देयर विल बी समबडी हु विल डिफीट यू। और फिर बाद में भौमासुर का युद्ध किससे हुआ, भगवान शिव और भगवान ने हरा दिया। प्रभुपाद भौमासुर बोलते हैं उसमें अन्य संदर्भ में अन्य असुरों का भी नाम आया। तो पहले हम पढ़ रहे आते आते हमें सोच रहा था कि कोई भी लेक्चर देंगे तो उसमें कुछ तो प्रभुपाद एनेक्डोट्स होना चाहिए प्रभुपाद के लाइफ से, और मुझे कुछ नहीं मिल रहा था इसके लिए। प्रभुपाद के लेक्चर तो पढ़ा था थोड़ा बहुत, उसमें से कुछ पॉइंट्स मिले, कुछ नहीं मिल रहा। तो फिर रास्ते में प्रभुपाद नेक्टर बुक था ऐसे का किसी के कार में रहते देख रहा था, वापस उनको लौटा देखे कि ईगो के लिए अच्छा नहीं ना, लोग मैं मुझे बुक के साथ देखें, लोगों के लिए अच्छा है कि मैं कुछ देखता नहीं कभी बोलता हूँ। तो मैं बुक नहीं लाया, भगवत कृपा से निकलते निकलते एक इंसिडेंट मिला जो अभी बोलूंगा कि कुछ एक शिष्य था बिल्कुल सड़ा हुआ, और कुछ आलू लाया प्रभुपाद के लिए, वहाँ के प्रभुपाद खरीद के लिए प्रसाद भोग बनाने के लिए, भोग प्रिपेयर करके प्रसाद बनाने के लिए, क्योंकि सड़ा हुआ था, रॉटन पोटेटो, क्योंकि वो पिंक कलर का था। तो प्रभुपाद को बताया कि रॉटन, तो प्रभुपाद ने तुरंत बताया यस इन कलियुगा देयर इज चीटिंग एवरीवेयर। तो आलू में भी भ्रष्टाचार है, उसमें भी मिलावट है। तो कलियुग का लक्षण यही है, कलियुग का सबसे बड़ा इससे भी बड़ा लक्षण यह है कि भक्ति में भी मिलावट हो सकती है। कर्म ज्ञान इत्यादि का मिश्रण नहीं होना चाहिए भक्ति में, ज्ञान कर्म जनावृतम होना चाहिए भक्ति। और यही महाप्रभु ने श्री वैष्णव संप्रदाय से दो चीजें उधार में लिया था, गौड़ी सिद्धांत से उधार में नहीं लिया था, जैसे वही सबके ऊपर हो तो वही है, उत्कले पुरुषोत्तम चारों संप्रदाय उन्हीं के लिखते हैं पद्म पुराण में वर्णन है। लेकिन एक था कर्म और ज्ञान से विलीन भक्ति, शुद्ध भक्ति, विमुख होकर कर्म और ज्ञान से मुक्त होकर जो शुद्ध भक्ति है श्री वैष्णव से उसका लिया था उस सिद्धांत। और दूसरा था वैष्णव सेवा, वैष्णव सेवा श्री वैष्णव से लिया था श्री प्रभुपाद ने। यह हमें समझना चाहिए एक प्रकार से दोनों में संबंध है। यदि कर्म और ज्ञान से विरक्ति लेना है, शुद्ध भक्ति में स्थित होना है, तो वैष्णव सेवा अनिवार्य है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो कलयुग के इस घोर प्रसर से हमें बचना है तो उसके लिए भी हमें वैष्णव सेवा ही एक अनिवार्य मार्ग है करना चाहिए। तो वो वैष्णव जो कि पारंगत हैं इस मार्ग में, और हमने बताया प्रचार अधिक से अधिक करें। जिस प्रकार परीक्षित महाराज कलि के आगमन उद्देश्य समझते ही स्लाइटेस्ट इंफॉर्मेशन जैसे मिला शर और बाण लेके निकल गए, उसी प्रकार हमारे मन में हमें रंच मात्र भी जैसे कली का आगमन पता चलेगा। ऐसे अभी पता नहीं चल रहा है क्योंकि सिर्फ कली है, सिर्फ कली है अंदर, इसलिए पता नहीं चल रहा है कली का आगमन हुआ। अभी मछली से पूछोगे तुम पानी में हो, उसको पता नहीं, इसके लिए वही माध्यम है। इसलिए हम इसलिए प्रभुपाद से किसी ने पूछा था इसलिए प्रभुपाद समटाइम्स आई फील आई एम इन माया, इट इज नॉट समटाइम्स यू आर ऑलवेज इन माया।
तो परीक्षित महाराज को महावैष्णव होते हुए पराधुखे दुखी और उन्हें अपने प्रजा को बचाना भी था, पराधुखे दुखी उनके दुख में उनको दुख था, उनको बचाना अनिवार्य था, इसलिए जैसे वार्ता सुनी तो तुरंत निकल पड़े। पांडव भी निकल पड़े थे तुरंत, जैसे कली आ गया सुना तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया, संन्यास ले लिया, वानप्रस्थ आगमन कर लिया, गंडमर्दन पर्वत की तरफ गए। लेकिन यहाँ पर दूसरे प्रकार जैसे कलयुग का कलयुग की सूचना मिली तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन किया तुरंत। प्रभुपाद बता रहे हैं स्पोर्ट्समैन को जैसे खिलाड़ी को मैच के जैसे अच्छा लगता है, रुचि होती है, रोचक लगता है, उसी प्रकार राजों को युद्ध से होती है। और क्या टक्कर होगा, दुनिया का सबसे बड़ा राजर्षि और कली समा स्वयं, और कली तो बिल्कुल बिना किसी स्कोर के हार गए, बाद में पता चलेगा, क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त थे, किसी से नहीं डरते। जैसे 88,000 शौनकादि ऋषि है वो शुद्ध भक्त नहीं थे, उसमें सब प्रकार के लोग थे। जब वो खुद बता रहे हैं कि यमराज हमारे पास है, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पृथ्वी से दंड मृत्यु का दंड नहीं मिलता भगवान के भक्तों को, तो ये तो भगवान के शुद्ध भक्त है। और महाभागा महाभागवत जिस उत्तरा के गर्भ को भगवान ने परिक्रमा लगाई, इसलिए उनको उत्तरायण बोलते हैं, उस उत्तरायण का भीष्मदेव ने प्रतीक्षा की थी, कृष्णा चक्रवर्ती बोलते हैं। तो परीक्षित महाराज को पहले से ही भगवान सुरक्षा कर रहे थे। वैसे तो हर जीव की सुरक्षा भगवान करते हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। लेकिन कौन सा जीव जो ऐसा बोल सकता है कि मैंने भगवान का दर्शन किया बचपन में ही, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कुमार माचर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। लेकिन परीक्षित महाराज बोला मैंने तो भगवान का दर्शन मैं जब भ्रूण था अंदर गर्भपात के अंदर तभी मैंने दर्शन कर लिया। तो इसलिए आचार्य ने बताया कि उत्तरा तुम इसको इसका नाम परीक्षित रखो, एग्जामिनर, और एग्जामिनर का दूसरे एक था उसको उनको गर्भपात के अंदर से उनको एग्जामिनेशन भी फेस करना पड़ा बचपन से। एग्जामिनेशन फेस करते हुए इसी प्रकार भक्ति में हमारा जन्म अगर कभी कभी होना है तो इस कलयुग रूपी ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए भगवान का शरण लेना ही पड़ेगा। वो भगवान आकर अपने कौमोद की गदा से ब्रह्मास्त्र को मारेंगे, तब हमारे अंदर के अनर्थ चूर चूर होंगे। और जैसे ही हमारे अंदर एक छोटा सा लक्षण मिलता है कि मेरे अंदर ये अनर्थ है, मेरे अंदर काम वासना है, मेरे में क्रोध है, मेरे में घमंड है, मेरे में लालच है, मेरे में लाभ पूजा प्रतिष्ठा की इच्छा है, मेरे वैष्णवों के प्रति प्रीति लक्षण नहीं है, मैं परस्त्री और परपुरुष के परपुरुष के प्रति आसक्त हूं, तुरंत युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, यह हमारा हथियार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कली का एक बहुत बड़ा एजेंट हमारे अंदर ही है, कौन, मन। मन की शक्ति बहुत प्रबल है, क्योंकि वो मंकी शक्ति जैसा है, बंदर जैसा है, मंकी इधर उधर दौड़ता रहता है। एक कभी कभी पास्ट में कभी फ्यूचर, माइंड का लक्षण है ये। मन रूपी पक्षी दो पंखों में उड़ता है, भूतकाल और भविष्य, हैंकरिंग फॉर द फ्यूचर, कांक्षति भविष्य के लिए, और शोचति लैमेंटिंग फॉर द पास्ट, हाँ ये क्या हो गया, या कुछ नहीं तो उस दिन क्या हुआ, आगे मैं क्या योजना बनाऊंगा। घर में अमिताभ बच्चन आया है, सत्कार करना है, और आप बैठे टीवी देख रहे हो जिसमें अमिताभ बच्चन का मूवी चल रहा है, हाथ में बीड बैग है, लेकिन अंदर हम प्लान बना रहे हैं किस प्रकार मैं सेवा करूंगा। सबसे बड़ी सेवा है हरिनाम, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, वो सेवा अगर करेंगे तो बाकी सेवा अपने आप आएगी। और कभी कभी हम सेवा के लिए साधना तक को त्याग करने के लिए तैयार है, तो सेवा इंपॉर्टेंट है। अगर हरिनाम के बिना इंग्लिश मोहन रूप एक और उन्होंने आश्रम के अंदर मेरा क्लास लगा रहे थे तो उन्होंने बताया हरिनाम के बिना जो कर रहे हैं वो भी मजदूरी है, चाहे टॉयलेट साफ करें, चाहे ऑल्टर में रहें, चाहे प्रचार करें, हरिनाम, शुद्ध हरिनाम, संलग्नता से हरिनाम, शुद्ध हरिनाम का प्रयत्न, यह उद्यम, यह संघर्ष, यह जरूरी है। अन्यथा मजदूरी है, जो भी करें, श्रम है वही केवलम। जैसे अनर्थों का थोड़ा सा रंच मात्र लक्षण मिलता है, हमें तुरंत वैष्णवों का संग लेना चाहिए, हरिनाम का संग लेना चाहिए, शास्त्र का संग लेना चाहिए, और ये शास्त्र लेकर हमें युद्ध के लिए निकलना चाहिए, क्योंकि और कोई उपाय है नहीं। कलयुग में सांगो पांगास्त्र पार्षद, महाप्रभु स्वयं हरिनाम रूपी शास्त्र लेकर निकले थे, और सांगो उपांग अत्र पार्षद, पार्षद अर्थात वैष्णव, और शास्त्र अर्थात हरिनाम, और कोई उपाय है नहीं वैसे भी कलि के प्रति युद्ध करने का, स्पष्ट करना है भागवतम में। और शास्त्र पढ़ने से यह पता चलेगा, भागवत पढ़ने से पता चलेगा, क्योंकि भागवत में वर्णित है कि हमें समझ में आएगा कि भौतिक पदार्थ और आध्यात्मिकता बीच अंतर क्या है। वी विल नो हाउ टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट। जितना अधिक रोज पढ़ेंगे प्रोपा के ग्रंथों का, प्रोपा के ग्रंथ ही सबसे बड़ा हथियार है इस कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए अभी, क्योंकि प्रोपा के बुक पढ़कर भी कई लोग हरिनाम जप करना शुरू किए बिना वैष्णव संघ के लिए, क्योंकि महावैष्णव है श्रील प्रभा, उनके संघ से हमें संघ मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर बैठे मैं सिर्फ बुक्स पढ़ूंगा, वैष्णव का संघ नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ समय बाद उस बुक का हम अपने आप इंटरप्रेट करेंगे। प्रोपा अपने ग्रंथ में बोलते हैं कि 16 माला करनी चाहिए, मैं 16 दिन में एक एक माला करूंगा, तो वैष्णव का संघ अनिवार्य है। और वैष्णव संघ अनिवार्य है अपने हृदय में, जितने अनर्थों को काटने के लिए, जिस प्रकार परीक्षित महाराज काट रहे थे। और हमें तैयार रहना चाहिए इस सर्जरी के लिए कि साधु जब बोलता है, साधु जब काटता है तो हमारे कल्याण के लिए है। और इस प्रकार सोने वाले लोगों के लिए जो बताया गया पिछले श्लोकों में, उनको इसी प्रकार प्रत्येक वैष्णव को काटना चाहिए, लेकिन पहले अधिकार प्राप्त हो अपने पदाधिकारी द्वारा, गुरु द्वारा, और संबंध स्थापित हो। जिस व्यक्ति को आप मदद नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को सुधार भी नहीं सकते, योग्यता नहीं है। इफ यू आर नॉट एबल टू हेल्प समबडी एडवांस स्पिरिचुअली, प्लीज डू नॉट गो एंड करेक्ट दैट पर्सन, प्लीज डू नॉट गो फाइंड फॉल्ट विद एनीथिंग इफ यू कैन नॉट करेक्ट इट योरसेल्फ। बी द चेंज दैट यू वॉन्ट टू सी, जो परिवर्तन हम देखना चाहते हैं स्वयं हम बने, हमारे अंदर पहले प्रचार करें, खुद को प्रचार करें, पहले उदाहरण बने, प्रत्येक वैष्णव उदाहरण बने कि दूसरों के लिए किस प्रकार कली के प्रसर से हम बच सकते हैं, फिर बाकी लोगों को प्रचार करें। जन्माशार्थक परिकर परोपकार, पहले खुद को प्रचार करें, बाण और असले के पहले खुद के ऊपर वार करें। जैसे प्रोपात बोलते हैं, किल हिम ही इज ईटिंग मीट, किल हिम ही इज ड्रिंकिंग, किल हिम ही इज टेस्टिंग लिकर, किल हिम ही इज डूइंग इलिसिट सेक्स। इस प्रकार नहीं करेंगे, आज का गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट नहीं है प्रोपात बोल रहे, तभी लोग सीखेंगे ऐसा बोलना प्रोपात। इसका मतलब नहीं सब जगह मारे, प्रोपात के कहने का उद्देश्य है पाप से घृणा करो, पापी से नहीं, गरीबी हटाओ, गरीब को मत हटाओ। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सबको राम राज्य चाहिए लेकिन राम नहीं चाहिए, हम सब स्वर्ग जाना चाहते हैं लेकिन कोई मरना नहीं चाहता, हम सब गोलोक जाना चाहते हैं लेकिन शुद्ध नहीं होना चाहता। और परीक्षित महाराज के इस ये जो संदर्भ चल रहा है, घटना चल रही है, इसमें हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, लेकिन एक बात तो हमें यह समझना चाहिए कि जहां भी हमें वैष्णवों के प्रति अन्याय, समाज में वैष्णव समाज में किसी भी प्रकार का संघर्ष, हमारे अंदर कोई प्रकार का अनर्थ, माया का किसी भी प्रकार का आक्रमण, हरिनाम में जब रुचि कम हो रही है, वैष्णव सेवा में जब रुचि कम हो रही है, जब शास्त्र अध्ययन में रुचि नहीं है, जब पर पुरुष या स्त्री के प्रति रुचि बढ़ रही है, अभी आसक्ति बढ़ रही है, तब हमें हरिनाम, गुरु, साधु, शास्त्र, वैष्णव सेवा, डीटी का दर्शन, डीटी सेवा, और खास करके हरिनाम का शरण लेते हुए वार करना चाहिए, उस पर आक्रमण करना चाहिए, तभी हम सफल हो पाएंगे। और इस प्रकार कलि के प्रसंग से हम बच सकते हैं। चार प्रकार के जो अधर्म है, धर्म के स्तंभ के जो खंडन करते हैं, उनको हम निकाल सकते हैं परीक्षित महाराज के अनुगत में रहते हुए। कम से कम ये 10,000 साल हम माध्यम बने, गुरु से ये प्रार्थना करें कि कृपया मुझे माध्यम बनाए, यदि आप चाहें तो मुझे माध्यम बनाए कि मैं संकीर्तन आंदोलन में आपका एक छोटा सा सोल्जर बनो, सैनिक बनो, जिससे कि मैं खुद को भी एक्सरसाइज करके सुधारूं और दूसरों के भी मदद करूं। सोल्जर ऐसा नहीं सिर्फ मारता है, सिविलियन टाइम्स में सोल्जर हेल्प भी करता है शांति के समय। और हमें यह भी याद रखना है, गुरु न सत्या, स्वजनों न सत्या, पिता न सत्या, जननी न सत्या, दैवम न सत्या, न पतिम न सत्या, न मौत समुपैत मृत्यु। यदि अपने आश्रित को निरंतर आने वाली मृत्यु से, पुनरावर्तन मृत्यु से हम बचा नहीं सकते, तो न गुरु बने, न पिता बने, न पति बने, न राजा बने, न पुत्र बने, न देवता बने। क्योंकि परीक्षित महाराज चक्रवर्ती थे, उस जोन के चक्र के वर्तित थे, स्थित थे, बीच में चक्रवर्ती सम्राट थे। हम भी अपने अपने चक्र में वर्तित हैं। इस चक्र में वर्तित ना होते हुए शील प्रोपात का ये जो चक्र है, होम चक्र, इसके वो सम्राट है, भक्तों के शिरोमणि हैं, भक्तों के सम्राट हैं, सार्वभौम है, वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा महाराज जैसे उनके अनुगत्य में वैष्णव सार्वभौम शिल प्रोपात है। उस चक्रवर्ती के चक्र में वर्तित होते हुए उनका अनुगत्य करें, उनके राज्य के नियमों का पालन करें और कली के प्रसर से बचें और बचाएं। मैंने इनको बिठा दें यहाँ पे जोर से बोलने के लिए। थैंक यू। हाँ, कोई प्रश्न टीका टिप्पणी या सशिष्ट हो? क्या प्राप्त होने की बात? हाँ हाँ, पक्षपात नहीं करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चन आशीष, तो हमेशा की तरह अच्छे प्रश्न पूछते हैं। और जब डर लगता है, जब कोई भी भक्त शुरू करता है कि आपने बताया, अरे मैंने क्या बता दिया, पहले ही आता है, क्योंकि अपने शुद्धिकरण के लिए अक्षला प्रभाव की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करेंगे, इसको उत्तर करेंगे। बहुत धन्यवाद आपके प्रश्न के लिए। प्रति का प्रश्न ये है, जितना मैंने समझा कि यहाँ पे बताया गया कि अधिकार प्राप्त हुए बिना किसी को रोके ना, जिसको सुधारना, ये उदाहरण दिया गया था सेवा के बीच में। लेकिन ये भी बताया गया था कि पक्षपात करना, कि समझना दोनों के बीच, जैसे धृतराष्ट्र के बारे में बताया गया उन्होंने पक्षपात किया, समान दृष्टियाँ नहीं देखा, तो इस दोनों के बाद किस प्रकार सामंजस्य हो सकता है। तो पहले समझें कि वही व्यक्ति जगन्नाथ बल सुब्रमण्य की जय, श्री दास महाराज की जय, तो किस प्रकार का व्यक्ति पहले समान दृष्टि रह सकता है। तो यहां पर बताया गया है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्ती ध्वनि सेवक स्वभाग पंडिता समदर्शी। वही व्यक्ति समदर्शी हो सकता है जो विद्या से प्राप्त विनय है उसके पास पहले। आपने तो पहले घमंड बोल के उसको रोक ही दिया, घमंड शब्द का आया गया ना, घमंड आया तो मैं गया है पहले। जो व्यक्ति विद्या से विनय प्राप्त करता है, शास्त्र में वर्णन है विद्या तथा विनय, तो अगर हमें विनम्रता नहीं प्राप्त होती तो वो विद्या ठीक नहीं है, दुर्विद्या है या अविद्या है। तो वैसा व्यक्ति किस किस को देखता है? ब्राह्मणे, ब्राह्मण को, गवि हस्तिनी गाय को, हाथी को, शनि चेव चंडाल को, श्वपा के चंडाल शनि चेव श्वान को और श्वान भाने वाले को, सबको समान दृष्टि देखता है। क्यों? क्योंकि वो सबके अंदर भगवान का स्फुरण देखता है। लेकिन वो व्यक्ति पहले विद्या विनय संपन्न है, उसका इंग्लिश भगवत गीता किसी के पास होता है एग्जैक्ट ट्रांसलेशन लेके, किसके याद है क्या है, द सेल्फ रियलाइज्ड स्टेज और समथिंग लाइक दैट। वैसा व्यक्ति समदर्शी बन सकता है। जब तक वैसा समदर्शी नहीं है, उन समदर्शियों का अनुगत हमें करना चाहिए जो समदर्शी हैं, और फिर उनके अनुसार करना चाहिए। अर्थात ऐसे सिचुएशन में अगर डाउट है तो चेक करना चाहिए अथॉरिटी से, इनको अंदर आने से ना दें इस प्रकार, और उनको तब तक करना पड़ेगी एक मिनट, कुछ और उनको बहाना दे सकते हैं अगर इम्पोर्टेंट व्यक्ति है वो। और दूसरा, सेवा करने के पहले चेक कर लेना चाहिए। क्या कभी कभी मायापुर में ऐसा होता है कि नए भक्तों में लगा देते हैं क्राउड कंट्रोल, किसी का चेहरा नहीं देखते, कि मायापुर में जो भी आता है सीनियर है, कितने सीनियर डिवोटी आते हैं, किसी का पक्षपात नहीं करते, रूल्स विल बी फॉलो, वो अलग बात है। लेकिन ये भी समझना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत ये बताता, वैष्णव शिष्टाचार ये भी सिखाता है, वी शुड नो द आर्ट ऑफ बीइंग फ्लेक्सिबल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द रूल्स। कभी कभी फ्लेक्सिबल होना भी सीखना चाहिए, मतलब समय के अनुसार, तत्काल की परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदलने के लिए तैयार भी रहना चाहिए, परिवर्तनशील होने के लिए तैयार भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नियमाग्रह है, हम नियमाग्रह हो गए तो हम परिवर्तनशील नहीं हो सकते। यदि अपने आप को सुधारने के लिए हम तैयार नहीं है तो हम सुधर भी नहीं सकते और सुधार भी नहीं सकते दूसरों को। तो ये एक बात है, एक तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, दूसरा जो विद्यार्थी में संपन्न है वो व्यक्ति कर सकता है समदृष्टिया, अन्यथा समदृष्टिया देखना मायावाद है, कोई भी आएगा सबके लिए एक नियम, ऐसा नहीं है। वैष्णव सिद्धांत है अचिंत्य भेदाभेद, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत कि सम पीपल आर मोर इक्वल देन अदर्स, सब समान है, कुछ लोग और समान है, मतलब समान से थोड़ा ऊपर है। वो कौन कौन है, जैसे उदाहरण के तौर पर इसी सेवा, अगर यही सेवा करनी है तो पहले पूछ लेना क्योंकि कौन कौन ऐसे भक्त है जिनको हमें रोकना नहीं चाहिए। एक मैं डर डर के बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ समय में मुझे ये सेवा करनी पड़ेगी, अभी रात को जा रही है, तो किस किसी को रोक सकते हैं। अगर अगर डाउट है तो कुछ ऐसे अथॉरिटी को वहां पर सीनियर वैष्णव हमारे साथ वहां खड़ा करा दो, सीनियर वैष्णव को जानते हैं, वो एक टेक किया जाता है, गुनाह में भी करते हैं, मायापुर में भी करते हैं, दिल्ली में भी करते हैं, वो स्पेसिफिक टू दैट सेवा। लेकिन जनरली बोलें तो सिद्धांत यही है, खुद को पहले हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, विनम्रता फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी विनम्रता का एक लक्षण है, जो व्यक्ति विनम्र है वही फ्लेक्सिबल हो सकता है। और वो अगर अगर खुद में डाउट है मैं उतना फ्लेक्सिबल नहीं हूँ तो ऐसा व्यक्ति को साथ रखें जो फ्लेक्सिबल है। यही संत कीर्तन है, मेरे से अकेले नहीं होता तो फ्लेक्सिबल आदमी निकलो, मेरे से जब नहीं होता तो जिसके साथ जब हो सकता उसके साथ जब करो, प्रैक्टिकल कृष्ण कॉन्शियसनेस सुपर प्रैक्टिकल। डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? और कोई प्रश्न? यस सर, आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट दैट। यू हैव अ क्वेश्चन? यू वांट टू मेक अ कमेंट? Yes. Yes, very important point. हाँ, लेकिन समझते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं कि वो गेस्ट हैं और अतिथि का सत्कार होना चाहिए सही ढंग से। हम ऐसा नहीं कि आयोजक हैं, उनके कंट्रोलर नहीं बने, तो हमें ईश्वर भाव से बचना चाहिए कि मैं कंट्रोलर हूँ। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है ईश्वर भाव नहीं है, क्षत्रिय का लक्षण है, ईश्वर भाव है उसमें। जैसे क्षत्रिय का लक्षण है विवेक आपके बलायेगा, जहाँ एक झगड़ा मिल गया वहां से पीछे नहीं हटेगा वो व्यक्ति। लेकिन वैष्णव का लक्षण है जहां हटना है वहां तुरंत हटने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी रणछोड़ है, तो कभी भी संघर्ष से पीछे हटने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। लेकिन हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सीनियर है कौन सीनियर नहीं है, इसलिए पहले उसके हिसाब से प्रिपरेशन रखना चाहिए, साथ में कुछ सीनियर होना चाहिए क्योंकि हमें बताएं कि इनको कैसे रोका जाए कैसे ना रोका जाए। बाकी जब हजारों लोग जब आ रहे हैं तो कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए, इसकी वजह से बैंड की भी जरूरत है, नहीं तो बैंड बजेगी वो भी है। तो आप कुछ प्रश्न पूछते हैं? आपका प्रश्न है, आप लोग ही पूछ रहे हैं, सेवा के लिए साधन को कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? यदि मैंने ऐसे सूचना दी तो मेरी गलती है, हो सकता है मेरे व्यवहार की वजह से ऐसा लगता भी होगा आपको, लेकिन ये हम बता रहे हैं कि लोग यहां तक कि सेवा के लिए साधना तक को त्याग करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दिस इज व्हाट आई सेड, कि साधना तक को त्याग करने के लिए तैयार हो रहे हैं, जबकि सर्वोच्च सेवा है हरिनाम, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। हाँ, मद्रासी से हिंदी में सुनोगे यही समस्या होगी, विवाह हॉन्ड की इंग्लिश क्लास साइड में अपना भी आइडिया थोड़ा डाल रहा। ये बात है कि साधना कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 9 बजे तक मोबाइल बंद कोई भी हो, 9 बजे में भागवत क्लास भी आता है जहां आप बैठे हैं। भगवत कृपा से अब तक इतने कॉल नहीं किया क्योंकि कई मोबाइल अभी भी ऑन है, तो मोबाइल का नाम सेल है, जाते ना सेल, जेल में भी जाता तो सेल में डाल दो, तो बंदी बना दो। स्ट्रेस का सबसे बड़ा एक कारण मोबाइल भी है, स्ट्रेस तनाव जो बढ़ रहा है। और कोई प्रश्न टीका टिप्पणी किसी और का अवसर देते हैं, उसके बाद आपके पास आता आपका हमारे पास चलते रहे। आयनम मतलब परिक्रमा करना, तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे भीष्मदेव, इसका मतलब है उस उत्तरायण जो कि भगवान है उनके दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे थे, ताकि उनके दर्शन योग्य दर्शन हो वैष्णवों के साथ में और शरीर छोड़े, उनका दर्शन करते हुए शरीर छोड़े, ऐसा ऐसा आचार्य बोल। वो तो है ही, ये तो आचार्य का उसमें वो तो और सुशोभित कर रहा है, उसको संपुष्ट कर रहे हैं। और न सिर्फ वो समय है कि भीष्मदेव के लिए क्या समय है, वो तो शुद्ध भक्त है भगवान के, कभी भी चाहे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो भरी वो तो जैसे पितृपक्ष में रात को 12 बजे भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, तो उनके लिए मतलब आया क्या वहां पे पार्थ सारथी लोक के निवासी है वो, प्रभुपाद बता रहे हैं भागवत में भीष्मदेव पार्थ सारथी लोक के निवासी है, पार्थ सारथी की पार्थ सारथी लोक के निवासी है। वहां पर कुछ आचार्य बोलते हैं वहां पर मेन क्या एक्टिविटी क्या पता है, वहां पर पार्थ सारथी अर्जुन को गीता सुना रहे हैं और भीष्मदेव सुन रहे हैं, क्या मजा आया ना, वीर रस का आस्वादन कर रहे हैं, जैसे मेरा एरिया नहीं उसमें घुसने नहीं चाहिए लीला वगैरह। और भी प्रश्न क्या मतलब, हाँ काश आप जोर से बोलते हैं तो मुझे सुनाई देता, कैन समबडी लाउडर रिपीट दिस क्वेश्चन कर रहे हैं, हे द सेम नॉट द सेम, ये बात हमें समझना चाहिए कि प्रभु का मदर का प्रश्न है, ये बात हमें समझना चाहिए कि मदर का प्रश्न ये है कि पाप से घृणा करो पापी से नहीं, जैसे हमने बताया तो कई लोग ऐसे नशे में इतने हैं और लोग बोल रहे हैं उनको अलग कर दो, समाज के जो लोग समाज में उनको घृणा करती है अपलपनीय लोग हैं, डिबॉचर्स कृपा लोग शब्द प्रयोग करते हैं डिबॉचर्स, लैटिन में एक शब्द पर्सोना नॉन ग्रेटा कृपा दो भी प्रयोग करते हैं जो मतलब समाज में जिनको नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि वैष्णव हमारे निताय हमारे नित्यानंद प्रभु ने किन को प्रचार किया, जगह बताया दीना हीना जता चीला हरिना में उद्धार का तारसा की जगह बताया दीना हीना जता चीला, दीन से हीन व्यक्ति जघन्य से जघन्य कार्य करने वाले जगाए को भी जगाया, जघन्य कार्य करने वाले जगाए को जगाया नित्यानंद प्रभु ने, तो हमें भी लेकिन नित्यानंद प्रभु के अनुगत्य का मतलब नहीं कि अनुकरण कर सके, जिस एरिया में जैसे सभी भक्त लोग हरिनाम निकालते हैं हरिनाम संगीत निकालते हैं तो बार के बाहर खड़ा रहकर हरिनाम करते कुछ समय तक, शराबी कभी कभी शराबी लोग बीच में के नाचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके पास है कि भाई हरिनाम बोलो भाई हरिनाम बोलो भाई बोलेंगे बहुत कुछ करेगा वो बोलने के अलावा भी, तो हमें इतना समझना चाहिए कि कम से कम हमारे मर्यादा के अंतर्गत रहते हुए जितना प्रचार कर सकें वो करें, उनको प्रसाद खिलाएं, जो व्यक्ति शराबी है समाज में जगह आएगा तो सही उसको बढ़िया सा प्रसाद खिलाओ, सर पनीर सब्जी खिलाओ या सब्जी खिलाओ और हरिनाम देते रहो, जपा मशीन चलाओ उस एरिया से हरिनाम निकालो, और हरिनाम में इतनी शक्ति है कि वो काम करेगी आज नहीं तो कल, जैसे हमारे गुरु भाई यहाँ पर परशुराम होता तो बीच बीच में अंतर्ध्यान हो जाता था पता नहीं, तो वो बोलते हैं उनका प्रारंभिक भक्ति में ऐसा हुआ था कि एक हाथ में थाला एक हाथ में प्याला तो माला जीत गई, तो देखिए उनको कितना विश्वास है हरिनाम पर, हरिनाम की वजह से वो भक्ति में आए, हिप्पी हैप्पी कैसे बने, ये सारा आंदोलन खड़ा है हिप्पी से, क्यों क्योंकि आंदोलन है किचन रिलीजन, उनको प्रसाद खिलाइए, प्रोपात बुलेट खिलाइए। अब प्रोपात बुलेट हम उतना अच्छा नहीं बना सकते, तो प्रोपात बुलेट हरिनाम भी है वो भी खिलाइए, वो जपा मशीन के द्वारा, पेपर कॉटर के द्वारा, या खुद गाते रहिए, प्रसाद बनाते हैं। पता है ना, माता जी लोग चपाती बनाते हैं तो थाली बजता है, थाली बजते हैं हाथ की लकीरें निकल जाती हैं और पाप की पक्षी उड़ जाती है अंदर, हमारे भी उठेगी, उनकी भी उठेगी, उड़ेगी। विश्वास है हर नाम पर, प्रसाद में विश्वास है? अगर नहीं है तो पहले खुद को दीजिए। हम भी कौन सा काम है, हम सब शराबी हैं, अलग अलग शराबी हैं। कोई अहंकार का शराबी है, अहंकार का नशा ले रहा है, कोई काम का नशा ले रहा है, कोई क्रोध का नशा ले रहा है, कुछ कुछ नशा है ही, अज्ञान का तो है ही नशा, नशा अज्ञान का ही सबका जड़ है, इग्नोरेंस इज द रूट कॉज। हाँ, भक्ति भी नशा है, बहुत अच्छी बात है। अब तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन बताते हैं आचार्य भक्ति नशा है। तो उम्मीद है आप सबके आशीर्वाद से मैं भी स्थिति में पहुंचूंगा। यस, और कुछ प्रभु जी का एक प्रश्न था, उससे विराम देंगे। वो एक्चुअली मेरी गलती है, क्योंकि मैं खुद हमेशा किसी को रोकता हूँ तो मैं तो गुस्से में आ ही जाता हूँ। वो मतलब बेचारी थी, मेरे से मैं ठहरा 5 फुट 10 इंच का एक टन वाला आदमी, वो इतू सी है बेचारी, वो मेरे पे इस आवाज़ पे नहीं बोल रही थी, तो मैंने अपनी ओर से निकाल दिया। और दूसरी बात ये थी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, रोज़ मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ, मेरे से बहुत मतलब बहुत वात्सल्यजनक व्यवहार भी करते हैं। वो इस प्रकार बोले, मेरे को रोक रहे हो, मतलब मैं हूँ ऐसे, मैंने तो रोक रहे, मेरे में आता, मेरे में रजोगुण तो इसलिए ऐसा आ गया, मैंने ऐसे, उन्होंने ऐसा नहीं कहा। कई लोग कभी कभी ऐसा बोलते हैं, तो कैसे भी बोले, बोलते हैं ना कि अपने हैं तो इतना अपनापन तो होगा, एक डांट खाना भी हमारे लिए अच्छा है, कृपा है। वो डांटे हमें या प्यार से बोले, उल्टा तो हमें कभी कभी लगता है कि जैसे हमारे गुरुदेव और वरिष्ठ वैष्णव कभी कभी हमको डांटते नहीं तो डर ज्यादा लगता है, क्योंकि डांट खाना जरूरी है तभी आगे बढ़ेंगे। डांट खाए बिना वी डोंट एडवांस, नो डांट। डांट का मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मुश्किल है, डॉन्टिंग टास्क, बहुत कष्ट है पहुंचने का, डॉन्टिंग। लेकिन बिना डांटिंग के, डॉन्टिंग टास्क में हम सफल कभी नहीं हो पाएंगे। डांट खाना है, यही कृपा है, वैष्णव की कृपा उसकी भर्त्सना से भी उपलब्ध होती है। गाली दें बहुत अच्छा है, अद्वैत आचार्य ने क्या किया, मायावाद का जबरदस्त प्रचार किया जानबूझ के, क्यों, कि महाप्रभु मुझे जरूरत से ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। ठीक है, मैं महाविष्णु हूं, फिर भी वो तो श्याम सुंदर है, राधा कृष्ण ना ही अन्य, वो मुझे डांटते नहीं है तो मैं मायावाद का प्रचार करूंगा। जैसे ही पता चला, महाप्रभु ने पिटाई लगाई और बोले कृपा मिल गई, कृपा मिल गई, कृपा मिल गई। वैसे हमें भी कूदना चाहिए, जब वैष्णव हमें डांटते हैं ऐसे ना कि मुझे कैसे डांटा, मुझे कैसे डांट सकते हैं ये, अपने तो क्या समझते हैं, थोड़ा सीनियर है तो कुछ बोल दिया, बोलो यार, सीनियर नहीं बोले तो कौन बोलेगा तुम्हें, वैसे किसी को तो सुनते नहीं है, बाहर ऑफिस में जो सैलरी देता है उसके सुनते हैं, घर पे जो खाना बनाती है या जो सैलरी लाता है उसके सुनते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण लाता है उसके नहीं सुनते। जितना डांट अधिक खाएंगे उतना आगे बढ़ेंगे। मैंने एक बार मोहन प्रभु से पूछा था, मैं बाहर जब रहता था, मैंने प्रभु जी आप मुझे डांटते नहीं हो, तो बोले कि होगा टाइम आएगा जब अंदर आओगे ना तब डांटोगे। और कभी कभी लगता मैंने क्यों पूछा। ऐसे उतना डांटते नहीं है, ऐसे बोल रहा हूँ, कभी बहुत अच्छा लगता है। जैसे कभी श्री गोपाल कृष्ण मुझे बताया, ऋषि कुमार यू आर सो इनएफिशिएंट, जो सुन के इतना अच्छा लगता है। You are so, you have to get mature. Rishi Kumar, you have to become mature. You are so disorganized. You are so inefficient. For me, this is like Goloka. आप कृपया मुझे आशीर्वाद दें, मुझे अपने गुरु और वरिष्ठ वर्षों का अधिक से अधिक डांट खाओ, लेकिन उनको कष्ट न दो, उनको बोझा ना बनो। ऐसा नहीं उनका बोझा बन के दांत खाऊं, बोझा भी ना बनो लेकिन दांत भी खाऊं, ऐसा कोई शॉर्टकट है तो प्लीज आशीर्वाद दीजिए। ग्रंथ राशि में बागधाम की जय, शीला प्रभुपाद की जय, परीक्षित महाराज की जय, नीता नीता गौर सी बना प्रेमानंदे।